وقت فرمائے وقت صلوات پڑھ جی محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
پروردگار عالم ہماری گناہگار آنکھوں کو زیارت امام زمان کے قابل بنائے. ایک بار پھر صلوات پڑھ جی محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
اور اس دعا کے ساتھ کہ رب ذوالجلال ہمیں خضوع خشوع خلوص اور طہارت ظاہری اور باطنی سے بھرپور ایسی محفل برگزار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
لا حول ولا السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين نبينا وشفيعنا والطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة دائمة على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي وأبي صلوات محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مولانا حسین کا فرمان میں اپنے جد کی امت کے اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. میرا یہ قیام اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے ہے. اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں. قیام حسین کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کربلا تک جانے کا مقصد بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کربلا کا مقصد کیا ہوا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. شام غریبہ اور کوفہ و شام کے سفر کا مقصد کیا ہوا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حضرت ثانیہ زہرا اور امام سجاد کے خطبوں کا مقصد کیا ہوا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. عزاداری کے بانی کون تھے؟ حضرت ثانیہ زہرا اور امام سجاد. بنیاد رکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو بانی ہوتے ہیں. ہم لوگ بانی نہیں ہیں، بانی وہ ہیں. ہم تو بیچ میں شامل ہو کر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی اس گروہ سے تعلق ہے جو اس صدائے احتجاج کو دنیا میں پھیلانے کا जिम्मा एक शरई फरीजा समझ के अदा करना चाहता है। बानी वही है और इस आजादारी का मकसद क्या हुआ? अमर बिल मारूफ और नहीं अमर बिल मुनकर, क्योंकि हुसैन से मरबूत है ना। अगर हम हुसैन के साथ लिंक्ड हैं तो हमारी आजादारी का मकसद क्या होना चाहिए? अमर बिल मारूफ और नहीं अमर बिल मुनकर। हमारी मजलिस का, हमारे मातम का, हमारे नौखानी का, हमारे आजादारों का किसी भी रूप में हो, चाहे वो मातमी के रूप में है, चाहे वो नौखान के रूप में है, चाहे वो खतीब के रूप में है, चाहे वो आलिम दीन के रूप में है, चाहे वो सुनने वाले हैं, चाहे वो बोलने वाले हैं, कोई भी किसी भी रूप में, हर एक का मकसद बुनियादी तौर पर और उसूली तौर पर क्या है? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है। मौला जंग सिफीन में जब अपने फर्जंदाम को जंग की तरबियत दे रहे हैं तो एक अजीब जुमला फरमाते हैं, कहते हैं देखो जब दुश्मन पे हमला करो तो दुश्मन की आखिरी सब पे अपनी नजरें गाड़ दो, यानी अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव को ना भूलो, नजर तुम्हारी एम एंड ऑब्जेक्टिव पे होनी चाहिए। बाकी मामलात के छोटे मोटे मामलात ये कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं रखते हैं। जब तुम्हारी नजर आखिरी सब पे होगी, जब एम एंड ऑब्जेक्टिव को इंसान नहीं भूलता है तो वो अपने मकसद तक पहुंच जाता है, वरना छोटे छोटे रेले, छोटे छोटे मसाइल हमें अपनी राह से मुनहरिफ कर सकते हैं और कर देते हैं। यानी एक मामला आया, हम उसमें उलझ गए और उस उलझने के बाद हम अपना एम एंड ऑब्जेक्टिव भूल गए, उसी के होकर रह गए। और तारीख में यही हुआ, ईसाइयत के साथ यही हुआ, यहूदियत के साथ यही हुआ, और मजाहब और अंबिया और मुरसलीन की तालीमात के साथ यही हुआ कि कोई एक बादशाह आ गया, उसने एक मसला खड़ा कर दिया, लोग उसमें उलझ गए और वो चीज वहीं पर महदूद होकर रह गई, उसके बाद अपना मकसद नहीं भूली। हम जब सफर में जाते हैं, सफर पे निकलते हैं, दुरुस्त है, रास्ते में खुदा ना खासा किसी ने कोई मसला खड़ा कर दिया, कोई कील लगा दी रोड में और गाड़ी पंचर हो गई, टायर खराब हो गया। अब हम क्या करते हैं? निकलते हैं, गाड़ी का टायर चेंज करते हैं, स्पेयर व्हील लगाते हैं उसमें, और उसके बाद उलझ के नहीं रह जाते कि यार ये टायर क्यों पंचर हुआ, मैं कील के पीछे पड़ जाऊं, कील किसने लगाई, उसके पीछे पड़ जाऊं, ये तमाम मामलात में और अपने सफर को भूल जाऊं। गाड़ी का टायर चेंज करते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। सफर को नहीं भूलना, मकसद को नहीं भूलना, एम एंड ऑब्जेक्टिव को नहीं भूलना। हर चीज में एक एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है, एक मकसद होता है और एक वसीला होता है जिसको हम मीन कहते हैं, वसीला जिसके जरिए एम एंड ऑब्जेक्टिव हासिल किया जाता है। एक वसीला होता है मीन, और एक होता है एम एंड ऑब्जेक्टिव जिसके जरिए हम एम एंड ऑब्जेक्टिव तक पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पे गाड़ी क्या है? एम एंड ऑब्जेक्टिव है या वसीला है? वसीला है। लेकिन गाड़ी खरीदना क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है? नहीं, वसीला वसीले के तौर पर हम खरीदते हैं। गाड़ी मीन है, एम एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर बाद लोग उसको एम एंड ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना, सुबह से शाम तक उसको पॉलिश कर रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं, उसकी सुथराई कर रहे हैं, उसकी दिखाई कर रहे हैं, और उसमें जाना कोई नहीं है, क्यों? जब जाना होगा टैक्सी को बुलाने, क्या खराब हो जाएगी बाहर जाकर? क्या कहेंगे कि ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है, एक बेवकूफ इंसान है, इसने वसीले को मकसद बना लिया है। ये वसीला है, किस लिए वसीला है? ये हमें जाना हो कहीं, हमने जॉब पर जाना है, हमने काम पर जाना है, हम अपने बिजनेस में जा रहे हैं, हमने बच्चों को स्कूल लेकर जाना है, हमने किसी और जगह जाना है, हमने मजलिस में जाना है, हमने किसी के घर जाना है सोशलाइज करने के लिए, इन तमाम उसमें वसीले के तौर पे क्या है? गाड़ी है, वसीला है, मकसद नहीं है। इसी तरीके से हम दुनिया में जब आते हैं, बड़े होते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, ये स्कूल जाना क्या है? वसीला है, एम एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है। दुरुस्त, जब स्कूल जाते हैं, वरना अगर इसको एम एंड ऑब्जेक्टिव बना ले कहेंगे क्या जिंदगी है भाई? सुबह उठ के हम अर्ली मॉर्निंग में जब नींद आ रही होती है, हमें जगा दिया जाता है, हमें किताबें पैक करके पकड़ा दी जाती है, अभी स्कूल जाओ, और स्कूल जाके सारा दिन पढ़ पढ़ा के वापस आ जाओ, ये क्या चीज है? लेकिन हमारी निगाह इस वसीले पर नहीं होती, यहां नहीं उलझती, हमारा मकसद उस बुलंद एम एंड ऑब्जेक्टिव की तरफ होता है, हमारी जहन, हमारी निगाह, हमारा शऊर उस तरफ होता है कि जब ये तालीम मुकम्मल कर लूंगा तो एक अजीम मकसद मुझे हासिल होगा। उस अजीम मकसद के हुसूल के लिए कई सालों की मुशक्कत, तकलीफ जो बज़ाहिर बेमानी लगती है, उसको मैं अंजाम देता हूं ताकि उस मकसद को के हुसूल के मैं काबिल हो सकूं। तालीम क्या हुई? वसीला। मकसद क्या है? मकसद क्या है? सच्ची सच्ची बताएं, है माल बनाना है, नोट कमाने ना, फिर नोट कमाए नहीं जा सकते, इसके असल मकसद ये नहीं था। ये कैपिटलिज्म ने हमारे लिए पैसे के हुसूल को एक बहुत बड़ा क्या उसकी आर्टिफिशियल किल्लत पैदा करके नोटों की क्या कर दिया हमारे लिए, उसको इतना बड़ा चीज बना दिया। इंसान होता है ना कई चीज, यहां पे मिसाल के तौर पे अभी पैसों की बड़ी कीमत है, लेकिन अगर ये पूरा हॉल नोटों से भर के ताले लगा दिए जाए, इस नोट की कोई वक्त रहेगी? खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, कुछ और नहीं मिल रहा, क्या करेंगे? एक बादशाह था, वो कहीं शिकार से निकल के लिए निकला, पुराने जमाने में थे घोड़ों में इतने बड़े बॉडी गार्ड वगैरह नहीं हुआ करते, हेलीकॉप्टर वगैरह, तो शिकार के लिए निकला, कहीं रास्ता भटक गया। उसको अपनी सल्तनत पे बड़ा नाज था कि मेरे पास बड़ी सल्तनत है और बड़ा उरूज है मेरे पास, खुदा कई दफा अगर थोड़ी सी लाइन खुदा के साथ मिली हुई हो ना तो खुदा हिदायत देता है। फिर उलझ गया, कहीं चला गया, रास्ते में जब रास्ता भटक गया, प्यास लगी, पानी मौजूद नहीं था, एक शख्स मिला उसको, ने कहा बहुत प्यासा हूं मुझे पानी दे दे। कहा पानी है मेरे पास, पानी मैं तुझे दे दूंगा लेकिन तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। कहा कितनी कीमत चाहिए तुझे पानी की? कहता है तेरी आधी सल्तनत। आधी सल्तनत, अब कोई बात करे कि भाई आधी सल्तनत दे दो, मैं आपको एक गिलास पानी देता हूं या आपकी जरूरत के मुताबिक पानी देता हूं, तो कहेगा यार ये बेवकूफी वाली बात कर रहे, ये कौन सौदा करता है? लेकिन जिस हालत में वो था, क्या हो गया, जिस जो हालत थी, मैंने कहा ना हालत खराब कर देते हैं लोगों की। कल के लेक्चर में मैंने जिक्र किया था ना, लोगों को गरीब कर दिया, मुखलिस कर दिया, जरूरियात के काबिल नहीं रहे, और कहा कि हर चीज तुम्हारी पैसे से पूरी, लोगों को पैसे के पीछे डाल दिया। इसी तरीके से क्या हुआ, जब उसकी जरूरत एक गिलास पानी से पूरी हो रही थी, वो गिलास पानी नहीं था, जब उसकी जिंदगी इंसान के खतरे में होती है ना, फिर इंसान को हकीकत का एहसास होता है कि असल चीज क्या है। फिर वो सारी, उसने कहा ठीक है आधी सल्तनत देता हूं, मेरी जरूरत का पानी मुझे दे दो। उसने आधी सल्तनत लेके उसको पानी दे दिया। पानी पीने से अजीब इत्तेफाक है, उसको प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हो गया कि उसको जब वो यूरिन पास करना चाह रहा था तो यूरिन पास नहीं और अटक गया, और पता है जब पेशाब बंद हो जाए इंसान का, वो कितने ब्लैडर में कितनी तकलीफ होती है और कितनी असियत में मुब्तला होता है। वो प्यास की तकलीफ तो बर्दाश्त हो जाती थी, ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। उसको कहता है भाई ये पानी जो मैंने पिया था उससे मुझे ये तकलीफ हो गई, इस तकलीफ का बताओ क्या करूं मैं, किस तरीके से? कहता है इसका आदमी मेरे पास है, मैं हिकमत भी जानता हूं, एक दवाई है, ये फक्की मेरे पास है, ये दवाई देसी दवाई मेरे पास है, और ये खाओगे तुम्हारा वो दूर हो जाएगा। कहता जी ये क्या मतलब, ये खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, तो मुझे दे दो। उन्होंने कहा दूंगा लेकिन पहले कीमत तो चुकाओ। उसने कहा क्या कीमत है इसकी? कहता जो बाकी आती है सल्तनत है वो मेरे वादे कर दो। बड़ा परेशान हो गया, पूरी सल्तनत जारी, लेकिन जो अजियत में जब होता है ना फिर इंसान फिर कुछ नहीं देखता है। ये दुनिया के हमारे चोचले हैं, ये दुनिया के नखरे हैं, मलकुल मौत जब सामने आता है ना सब चीजें साफ हो जाती हैं। दुरुस्त है, वो अजियत में जब मुब्तला था उसने कहा आधी सल्तनत और भी मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, लिख के दे दिए आधी सल्तनत भी तुम्हारी, और जनाब उसने कहा कि वो फक्की दी, और उस फक्की से उसका क्या हो गया, वो यूरिन वाला प्रॉब्लम उसका जो था ब्लैडर उसका रिलीज हो गया, वो अजियत से निकल गया। उसके बाद उसको कहता है तू इस सल्तनत पे फख्र करता है जिसकी कदर और कीमत एक गिलास पानी का जिस्म के अंदर जाना और एक गिलास पानी का जिस्म से बाहर आना, इस पे नाजा है तू। हम आर्टिफिशियल चीजों के पीछे पढ़ पढ़ के हम आदि हो गए। जिस तरह बच्चे के मुंह में डमी दी जाती है ना, वो बच्चा समझता है कि ये डमी जो है ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये जब मुझे अजीत होती है वो ढूंढता रहता है कहां है डमी, आदत पड़ जाती है। कई दफा बच्चे बड़े भी हो जाते हैं उस डमी को नहीं छोड़ते हैं। एक कैदी अगर 40-50 साल कैद खाने में गुजार दे, प्रिजन में गुजार दे, और 40 साल के बाद उसको आजादी का परवाना मिल जाए कि तुझे आजाद किया जा रहा है, तो शायद उस बंदे को हार्ट अटैक हो जाए कि मैं क्या करूंगा बाहर जाकर। वो इस बात से बेखबर है कि बाहर एक दुनिया, एक कायनात, एक खूबसूरती, एक आजादी उसकी मुंतजर है, क्योंकि उसने जिंदगी ही कैद खाने में गुजार दी है। तो दोस्तों अजीजों, हम जो मटेरियलिज्म के कैदखाने के अंदर गिर गए हैं, इस कैदखाने से आजादी होने से हम लोग क्योंकि उसके अंदर इतने आदी हो चुके हैं कि उससे आजादी से हम खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। हालांकि खौफ की बात नहीं, आजादी तो खुशी की बात है, आजादी तो नेमत है। जब इंसान को आजादी मिलती है तो इसमें इंसान के जिस्म को नहीं, इंसान के जिस्म को भी आजादी मिलती है, इंसान की रूह को भी आजादी मिलती है, इंसान की थॉट्स, उसकी सोच और फिक्र को भी आजादी मिलती है। तो इंसान इन चीजों को, दुनियावी चीजों को वसीला समझे, मकसद ना बनाए। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। یعنی دنیاوی چیزیں وسیلہ ہیں. خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان وسیلے کو مقصد بنا لیتا ہے، جب مین کو ایم اینڈ آبجیکٹو بنا لیتا ہے، جو مین ہے ایم اینڈ آبجیکٹو کے حصول کا اس کو مقصد بنا لیتا ہے. انسان پہلے اپنی زندگی میں ہر چیز کو ڈیفائن کرے کہ میری زندگی کا مین کیا ہے اور ایم اینڈ آبجیکٹو کیا ہے. تو انسان اسی طریقے سے جب زندگی گزارتا ہے، ان دو چیزوں کو ڈیفائن کر لے تو زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے. یہ وہ معاملات ہیں جو ہم سیکھ جائیں، یہ سننے کے لیے نہیں ہے یہ باتیں. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پروردگار عالم ہمیں امام کا ظہور نصیب فرمائے یہ چیزیں ایڈاپٹ کرنے کے لیے. ان کو پریکٹیکل لائف میں ایڈاپٹ کریں گے تو ان کا فائدہ ہوگا. سننے سے کوئی مسئلہ نہیں، انفارمیشن ہے، انفارمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انفارمیشن کا فائدہ تب ہوتا ہے جب اس کو اپلائی کر سکے انسان اور اپلائی کرے، ورنہ انفارمیشن تو شیطان کے پاس بھی بہت تھی. شیطان کو دیکھیے، شیطان کے پاس بہت انفارمیشن تھی، وہ اللہ کے بارے میں جانتا تھا، آخر دم تک سجدے کا انکار کر دیا لیکن رب پہ رب پہ کہتا رہا. وہ اس کو معلوم تھا میرا رب کون ہے، لیکن جب اپلائی کرنے کا اس کے نالج کا اور انفارمیشن کا وقت آیا تو وہاں پہ اس کی خواہشات نفسانی نے اس کو حق کے راستے سے جدا کر دیا. اور باوجود اس کے کہ دنیا کے چپے چپے پر اس کے سجدوں کے اور عبادت کے نشان تھے، وہ ایک نا نے، ایک سجدے کے انکار نے اس کو لعین رجیم بنا دیا. صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تو ایم اینڈ آبجیکٹیو ہر چیز کا مد نظر رکھنا چاہیے. ہماری ان مجالس کا، ہماری ان محافل کا، ہماری عزاداری کا، ہمارے نوحوں کا، ہماری ماتم کا، ہمارے ان تقاریر کا، ہمارے ممبر کا، ان تمام چیزوں کا ایم اینڈ آبجیکٹیو کیا ہوا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب دیکھنا چاہیے، ہم خود اگر جج کرنا چاہیں تو دیکھیں کہ ہم مین کے اوپر کتنا زور لگا رہے ہیں اور ایم اینڈ آبجیکٹیو کا حصول کیا ہے. اگر آؤٹ پٹ دیکھنی کسی چیز کی تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ آبجیکٹیو کتنا حاصل ہو رہا ہے، ایم اینڈ آبجیکٹیو کتنا حاصل ہو رہا ہے. یہ سینٹر ہے، مثال کے طور پہ یہ سینٹر مین ہے یا ایم اینڈ آبجیکٹیو ہے؟ مین ہے، ایم اینڈ آبجیکٹیو تو نہیں ہے نا. یہ دیواریں کیا چیز ہیں؟ مین ہے، ایم اینڈ آبجیکٹیو نہیں ہے. یہ کارپیٹ کیا ہے؟ مین ہے، ایم اینڈ آبجیکٹیو نہیں ہے. یہ الیکٹریسٹی کے بلز دینا، یہ کرسیاں رکھی ہوئی ہے، یہ ممبر رکھا ہوا ہے، یہ مائک، یہ ساؤنڈ سسٹم، یہ بل دینا، یہ تمام دینا، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ وسیلہ ہے، مقصد ہے، یہ وسیلہ ہے، مین ہے، ایم اینڈ آبجیکٹیو نہیں. ایم اینڈ آبجیکٹیو کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دین کی تبلیغ کرنا، دین کے پیغام کو، محمد و آل محمد کی تعلیمات کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا. اب انسان خود جج کرے، کسی کو جج نہیں کرے، ہم خود جج کریں کہ ہم وسیلے میں کتنے مبتلا ہیں اور ایم اینڈ آبجیکٹیو کا حصول کس حد تک ہے، ہماری ان پٹ کتنی ہے اور اس کی آؤٹ پٹ کتنی ہے، ہم اپنی اولاد کی تربیت کے سب تک کر رہے ہیں، ہم خود کتنا سیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر کتنی تبدیلی آ رہی ہے. ان لیکچرز کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں تبدیلی آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ یہ جانا چاہیے نا. تو اگر ایک ہی شخص محرم کی پہلی تاریخ کو یہاں پہ انٹر ہوتا ہے اور اربعین کے روز وہی شخص واپس چلا جاتا ہے تو کیا ہم نے کچھ حاصل کیا؟ وہ فزکس میں ہم پڑھا کرتے تھے نا، وہ ڈسپلیسمنٹ کیا ہے کہ ایک آدمی اگر ایسٹ گیا 10 گز 10 yards، پھر ویسٹ، پھر ویسٹ گیا، پھر نارتھ گیا، پھر ساؤتھ گیا، تو ڈسپلیسمنٹ کیا ہوا اس کا؟ جہاں گیا تھا وہیں چلا گیا، تو اس نے کتنا کام کیا ہے؟ فائن سائنس کی زبان میں کتنا ورک کیا اس نے؟ زیرو. کیونکہ اس نے ڈسٹینس ہی اس نے کوئی کور نہیں کیا، جہاں تھا وہیں تھا. تو اس کو کہتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈو نتھنگ لک بزی. Do nothing, look busy. کچھ کام کرتے رہا ایسا. ہر کام کا ایم اینڈ آبجیکٹیو ہونا چاہیے. اس کو میرے دوستوں اس معاملے کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی جس طرح بن گئی ہے، ٹریڈ میل کے اوپر ہم کھڑے دوڑے جا رہے ہیں صرف کھڑے رہنے کے لیے جہاں پہ کھڑے، تو یہ کوئی مقصد نہ ہوا دوستو. اگر انسان ٹریڈ میل پہ کھڑے وہاں پہ بھی ڈسپلیسمنٹ زیرو ہی ہو رہا ہے، تو بے شک آپ ایک 15 منٹ کھڑے ہو تو سانس چڑھ جائے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، ایکسرسائز ہو جائے، لیکن آپ کھڑے تو وہی پہ نا جہاں پہ کھڑے تھے. ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں تبدیلی لے کر آنی ہے. اور تبدیلی، انسان ہمیشہ تبدیلی کو ریزسٹ کرتا ہے، یہ ہیومن نیچر ہے. انسان ہمیشہ تبدیلی کو ریزسٹ کرتا ہے. मैं बैठा हुआ हूं तो मैं कहूंगा बैठा रहने दो, मुझे खड़ा को लेकर ना कहो। मैं एक किस्म का ड्रेस पहनता हूं तो मैं कहूंगा इसी किस्म का ड्रेस मुझे पहने दो, मैं चेंज ना करूं। दुनिया चेंज करके ना, ये फैशन वैशन चेंज करके हमें कहती है कि हम आगे जा रहे, हम आगे नहीं जा रहे तो हम पीछे जा रहे होते हैं। ये हमें धोखा देने के लिए, हकीकत में हम देखना चाहिए हम कितनी आउटपुट ले रहे हैं, हम बहसियत इंसान के कितने बुलंद हुए, हमारी सोच और फिक्र में कितनी बुलंदी आई। हम अगर छोटे मामलात में उलझे हुए हैं तो यकीन मानिए कि हम बड़े मकसद की तरफ नहीं बढ़ रहे। जब इंसान बड़े मकसद को सामने रखता है, छोटी बातों में वो नहीं उलझा करता। हमें कोई भी चीज आकर उलझा देती है, हम किसी भी चीज में उलझ जाते हैं। हम अमर बिल मारूफ और नहीं नहीं मुनकर को कहीं भूल तो नहीं गए हैं, हम वसीले में इतने मुब्तला तो नहीं हो गए हैं कि हमने अपना मकसद भुला दिया इज्जतदारी का। हम हुसैन के मकसद के साथ अगर वाबस्ता हैं तो हम हुसैन के साथ वाबस्ता हैं, अगर उनके मकसद से खुदा ना खास्ता हम भूल गए या उससे अलग हो गए तो फिर हम हुसैन के साथ वाबस्ता होने का दावा नहीं कर सकते। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कहा गया, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी व अब्बी, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी व अब्बी, मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। उरीदु अन अमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूं कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करूं। ये मकसद हमें नहीं भूलना दोस्तों। इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मते जद, अपने उम्मत अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकाला। ये उम्मत क्या चीज होती है, उम्मत क्या चीज है, उम्मत
कम्युनिटी
है जी,
कम्युनिटी
कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी कैसे बनती है, लोकल लोगों से। अगर हम उर्दू जुबान समझने वाले सब लोग इकट्ठे हो गए तो क्या ये उम्मत बन गई, हम उर्दू बोलने वाले क्या हम उर्दू जुबान को समझते हैं, हम उर्दू के उसमें इकट्ठे हो गए, क्या हम उम्मत बन सकते हैं, एक कम्युनिटी बन सकती है, एक इकट्ठ बन सकता है, एक ग्रुप बन सकता है, एक गैदरिंग हो सकती है, लेकिन जो इस्लाम उम्मत कह रहे हैं वो उम्मत नहीं बन सकती। ह्यूमैनिटी कुल्लन तमाम चीजें, उसमें खुदा को मानने वाला भी शामिल है नहीं मानने वाला भी शामिल, ये ह्यूमैनिटी में से उम्मत जो कहा गया है, उम्मत जो इस्लाम का तसव्वुर है उसको पढ़ने की जरूरत है कि इस्लाम किसको उम्मत कह रहा है, इस्लाम किसको मुसलमान कह रहा है, इस्लाम किसको मोमिन कह रहा है, इस्लाम किसको शिया कह रहा है, ये डिफाइन करने की जरूरत है। मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग और है, हम अपने जहन और अपने एंगल से जो देखते हैं वो चीज और है। हमें देखना है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद किसको मुसलमान कहते हैं, किसको मोमिन कहते हैं, किसको शिया कहते हैं और किसको उम्मत कहते हैं। अगर कुछ मजबूर लोग हैं, मिसाल के तौर पे सुनामी आ गया और कुछ लोग किसी परेशानी में मुब्तला हो गए और उन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया कि हम यहां पर इस हवाले से खिदमत करेंगे, लोगों को बचाते हैं, अपना भी दिफा करेंगे, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करते हैं, क्या ये उम्मत बन सकती है, बन सकती है नहीं बन सकती, ये उम्मत नहीं बन सकती है। क्या ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से हम मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान के रहने वाले या ईरान के रहने वाले या इंडिया के रहने वाले या पाकिस्तान के या यूरोप के रहने वाले या इंग्लैंड के या फ्रांस के या स्पेन के या अमेरिका के या कनाडा के रहने वाले हम इकट्ठे हो जाएं तो ये उम्मत बन सकती है, नहीं बन सकती। इस्लाम में जो उम्मत का तसव्वुर है उसकी कुछ क्वालिटीज है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। लिंकेज जो क्रिएट करता है मुसलमान नहीं कहा, मुसलमानों को भी कहा कि मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन मोमिन के लिए कहा कि बेशक मोमिन जो है वो आपस में भाई भाई हैं। एक इस्लाम का लेवल है, एक ईमान का लेवल है। इंसान जब अल्लाह की निशानियों को अपने वजूद के बाहर अपने वजूद के अंदर देखता है और उन पर गौर खोज करता है और इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि कायनात का एक मालिक और खालिक मौजूद है जो है ही इसी काबिल कि उसकी इबादत की जाए, और वो कह देता है कि परवरदिगारा आज के बाद, अहद करता है अल्लाह से, परवरदिगारा आज के बाद मेरी पसंद मेरी नापसंद, मेरा उठना मेरा बैठना, मेरा चलना मेरा फिरना, मेरे एक्शंस, मेरे मूवमेंट्स, मेरे डीड्स, मेरी लाइकिंग्स, मेरी डिसलाइकिंग्स, मेरी एनिमिटी, मेरी फ्रेंडशिप तेरी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के मुताबिक होगी, तेरी पसंद और नापसंद के मुताबिक होगी। जब इंसान ये अहद करता है तो एक जुमला क्या अदा करता है तशहुद में, जिस तरह कहा जाता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाली। जब ये अहद करता है, जब ये प्रॉमिस करता है, जब ये अंडरटेकिंग करता है वो, तो किस दर्जे पे पहुंचा वो? इस्लाम के दर्जे पर। अब वो मुसलमान हो गया, उसने प्रॉमिस कर लिया, और जब इस प्रॉमिस को वो पूरा करता है तो फिर ईमान के दर्जे पर पहुंचता है, फिर वो क्या हो गया? मोमिन हो गया। वो जो अपने वादे के को पूरा कर रहा है या पूरा करने की कोशिश कर रहा है, उसकी जिंदगी अपने वादे को पूरा करने पर लग गई, अब वो ईमान के दर्जे पर पहुंचा। अल्लाह मुसलमान को और दर्जे पर कहता है, कहता है قالت الاعراب آمنا, कुरान की आयत है कि अरब के बंदू कहते हैं कि हम ईमान लाए, इनसे कह दो कि ये कहे हमने इस्लाम कबूल किया, अभी ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ, अभी ईमान दिलों में दाखिल नहीं हुआ, यानी इनके अक्ल शऊर सोच फिक्र अभी उस ऑटोमेशन पे नहीं पहुंची कि ऑटोमेटिक होकर सिवाय दीन के कोई और बात करे ही ना। ईमान वो दर्जा है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन भाई है, यानी भाईचारा अगर क्रिएट करना है, दूसरी एंगल से इसको देखते हैं, मोमिन भाई है, तो भाई अगर बनना है तो क्या रास्ता है, कौन सा रास्ता रह गया फिर? ईमान का। यानी अगर ईमान के दर्जे पर आ जाओगे तो भाई बन जाओगे, अगर भाईचारा नहीं हो रहा तो समझ लो कहीं ईमान में कमी और खलल वाकई है। समझ गया? बात समझ आई नहीं? समझ आ गई तो एक सलावत पढ़ दी मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कुछ कुछ सलावत थी, इससे भी ऊंचे ईमान के दर्जे पर पहुंचने से अगर भाईचारा नहीं पाया जाता, याद करो वो वक्त जब तुम्हारे दिलों में क्या थी, एक दूसरे के लिए कदूरतें थी, अल्लाह ने उसमें क्या डाल दिया, मोहब्बत डाल दी। मोहब्बत अल्लाह की नेमत है, मोहब्बत अल्लाह की नेमत है, और ये नेमत उसको अता होती है जो डिजर्व करता है, हर किसी को अता नहीं होती, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, तगोदौ करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है और डिजर्व करने के लेवल पर पहुंचना पड़ता है, फिर अल्लाह की तरफ से अता होती है। मोमिन भाई भाई है। मोमिन कौन? मोमिन की क्या डेफिनेशन बयान करेंगे? मोमिन और मुसलमान, मुसलमान हर कोई हो सकता है, लेकिन मोमिन जो है वो खास चीज है। मोमिन यानी जब उसको मालूम हो गया कि अल्लाह इस चीज से राजी नहीं, तो वो अपनी बात खत्म कर दे और वो क्या करे, उस बात को कबूल कर ले। हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे माशरे में एक बात राइज है ना कि मर्द की एक जुबान होती है, मर्दानगी यह है कि एक जुबान हो। हजरत इमाम का फरमान, फरमाते थे कि मर्द हुआ जिसकी एक जुबान ना हो। हजरत इमाम रिज़वानुल्लाह अलैह का फरमान कि मर्द वो है जिसकी एक जुबान ना हो। कहा हुज़ूर ये कैसे? कहा जब उसे पता चले कि मेरी बात गलत थी तो मर्दानगी है वो कबूल कर ले कि मेरी बात गलत थी, अपनी बात को हक के मुताबिक कर ले, ना ये कि गलत बात पे अकड़ा रहे कि जी मैंने जो कह दिया मेरी बात एक ही है, ये मर्दानगी है। इंसान अपनी गलती को तस्लीम करे। इन्नमल मुमिनून इख्वा, यानी जब पता चला कि मैं गलत कर रहा हूं और खुदा की तालीम और तरबियत और इस्लाम के कवानीन और उसूल के मुताबिक मैं नहीं हूं, ईमानदारी से सारी चीज को छोड़ देकर ये जो चीज है उसको मैं कबूल करता हूं। हक को कबूल करने की जब हमने आदत डाल ली तो हम हक के साथ मुतमस्सिक हो जाएंगे। अल हक ओ मालियन व अलियो महल हक, हक तक पहुंचेंगे तो अली के बगैर पहुंच ही नहीं सकते, अली तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। सलवार पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमारा फैक्टर क्या है, यूनिटी का फैक्टर क्या हुआ? यानी अगर एथनिक बैकग्राउंड की बुनियाद पे हमने यूनिटी कायम की है तो वो उम्मत नहीं बना सकता, यूनिटी बन सकती है, ग्रुप बन सकता है, ग्रो बन सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, लेकिन वो उम्मत नहीं बन सकती। अगर हमने जुबान की बुनियाद पर या बैकग्राउंड की बुनियाद पर या अपने मसाइल की बुनियाद पर या किसी और हवाले से कोई इकट्ठ और ग्रो या ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, तो फिर हम क्या बन सकते हैं? एक ग्रुप तो बन सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन तो बन सकती है, एक उम्मत नहीं बन सकते। उम्मत के लिए दीन इस्लाम जिन क्वालिटीज का जिक्र करता है, क्या कहता है? इस्लाम में सब बराबर नहीं है। इस्लाम बराबरी का दीन है, हुकूक सबको बराबर देता है, लेकिन हर इंसान को बराबर नहीं समझता इंसान इस्लाम। हल यस्तविल लजीन यालमून वल लजीन ला यालमून, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते क्या वो बराबर हो सकते हैं? कुरान के अल्लाह यस्तून, ऐसा नहीं हो सकता। जो इल्म है, अलबत्ता इल्म पहले अपना इल्म है, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, इस कायनात में कोई खुदा, कायनात में कोई रब, कोई मालिक खालिक मौजूद है या नहीं, ये पहला इल्म है। इसके बाद बाकी उलूम आते हैं। ये सारे उलूम इल्म में जो बुलंद है, दीन इस्लाम उसको बुलंद तसव्वुर करता है, और जो दीन इल्म में कम है उसको कमतर तसव्वुर करता है। एक दूसरी, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, तुम में से मुकर्रम अल्लाह के नजदीक कौन है जो तक्वा और परहेजगारी में बुलंद है? अल्लाह के नजदीक वो बुलंद है दर्जात उसके जिसका सेल्फ कंट्रोल हासिल है। तक्वा बगैर सेल्फ कंट्रोल के हासिल नहीं होता। पहली चीज क्या थी? सबमिशन अल्लाह के सामने। फिर क्या है? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल नहीं है जब अपने वजूद पे कंट्रोल ही हासिल नहीं, तो नेकी की तरफ या बुराई की तरफ हम कैसे लेके जा सकते हैं? जब एक तूफान आता है तो पानी तो ड्रिफ्ट करके बुराई की तरफ लेके जाता है, अच्छाई की तरफ जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, खुशी की तरफ जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, वरना नदी के साथ दरिया के साथ इंसान बहता चला जाता है ना। तो ये जो अच्छाई की तरफ आना है ये उस वक्त होगा जब इंसान को सेल्फ कंट्रोल हासिल होगा। इस सेल्फ कंट्रोल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इससे तकवा हासिल होता है। तकवा जो हासिल हो गया इस्लाम के उसूलों के मुताबिक, अब जब सेल्फ कंट्रोल हासिल हो गया तो इंसान अपने आप को अच्छाई की तरफ भी लेके जा सकता है, बुराई की तरफ। फिर तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ जब रुजू करता है, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद तरफ बढ़ने लग जाता है, अच्छाई की तरफ बढ़ने लग जाता है। यह चीज उसको अच्छाई की तरफ लेकर जाती है, सेल्फ कंट्रोल उसको तकवा। और तकवा का लेवल हर इंसान का, जिसका तकवा का लेवल बुलंद है दीन इस्लाम में वो बुलंद है, जिसमें तकवा का लेवल कम है उसका दर्जा कम है। दो चीजें हो गई। और तीसरा, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करते हैं, फजलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन दरजा, अल्लाह ने जो अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करते हैं उन लोगों को पीछे बैठ रहने वालों पर फजीलत अता की है। एक आदमी है, वो अपना एक काम भी करता है, बिजनेस भी करता है, घर को भी देखता है, वो आके दीन की खिदमत भी कर रहा है, और एक आदमी घर बैठा हुआ है, वो सिर्फ अपने वजूद तक देख रहा है, मुझे क्या हासिल हो रहा है, मैं खुद सीख लूं, अपने आप को ठीक कर लूं। जो दूसरों की हेल्प कर रहा है, दूसरों के बोझ को उठाने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह ने उसको दरजात बुलंद अता की है, को बुलंद दर्जा। ये तीन चीजें हैं जिनसे इंसान क्राइटेरिया, ये वो डायमेंशंस है जिसके जरिए इंसान खुद को एक ऐसी ईंट, एक ऐसी ब्रिक बना लेता है जो उम्मत की दीवार का हिस्सा बन सकती है। उम्मत की दीवार में हर डायमेंशन की ईंटें इस्तेमाल नहीं हो सकती। जब दीवार बनानी होती है ना, खास डायमेंशन की ईंटों से बनाया जाता है। वो ईंटें जब तक मैसर होंगी, इंसान का काम है कि वो अपने वजूद पर काम करे, अपने ईमान पर काम करे। ईमान जब आ गया तो ये डायमेंशन हमारी एक हो जाती है। जब डायमेंशन एक हो गई, फिर हम एक उम्मत का हिस्सा बन सकते हैं। इन नमा खरज दो लितलबिल इस्लाह भी उम्मत जद दी व अभी, मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए बढ़ रहा हूं। जद की उम्मत, उम्मत एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का नाम है जो दीन इस्लाम के उसूल और कवायद और जवाबित के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का अहद कर चुके हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर इस ईमान के लिए, ये ईमान ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। कई दफा एक ऑर्गेनाइजेशन में आदमी कहीं और जगह शहर में है, कहीं और काम कर रहा है, एक कोई काम, कोई भी काम कर रहा हो, दर्जे जब ईमान के दर्जे पर आएगा, ये ईमान खुद बखुद भाईचारा और दोस्ती क्रिएट कर देता है। मैं मिसाल दिया करता हूं कि अगर कंकरियों को ले, छोटे स्टोन्स पेबल्स ले ले और उनको कॉर्ड से बांध के फेंक दे, धागे से बांध कर फेंक दिया आपने, और अपने हाथ में पकड़ के जब खींचना शुरू करेंगे, यानी पत्थर बांधे आपने डोरी में और आपने फेंक दिए और डोरी के सिरे को अपने हाथ में पकड़ के खींचना शुरू किया, तो दो एक्शन होंगे, दो मूवमेंट्स होंगी। एक पत्थर खींचते हुए आपकी तरफ आ जाएंगे और दूसरा वो पत्थर आपस में करीब होते चले जाएंगे। जैसे जैसे करीब आते जाएंगे वैसे वैसे आपस में भी करीब होते चले जाएंगे वो, यानी आपके भी करीब आएंगे। और अगर हमारी डोरियां एक जगह बंधी हुई हैं तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हम उनके भी करीब होते जाएंगे जिनके साथ बंधे हुए हैं। कौन है जिनके साथ बंधे? हजरत इमाम ज़मान जो नुमाइंदा है मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस दौर में। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले, उनके भी करीब होते जाएंगे और दूसरा काम करीब होते चले जाएंगे, आपस में एक दूसरे के भी करीब होते चले जाएंगे। अगर मैंने भी एक, मेरा और आपका मकसद एम एंड ऑब्जेक्टिव एक है तो हम एक बस में सवार हो सकते हैं, वरना अगर मेरा मकसद और है, आपका मकसद और है, उनका मकसद और है, तो फिर हम एक बस में सवार नहीं हो सकते, फिर चांस नहीं है, फिर इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। फिर इंसान क्या करता है, वो ये नहीं कहता कि मैं गलत हूं, उसको दूसरा गलत नजर आता है, वो कहता है मेरा रास्ता ठीक है, जो मैं समझ रहा हूं ठीक है, जो मैं हूं वो ठीक हूं। क्यों? ये उसी सूरत में होता है जब इंसान में मैं आ जाती है। जब मैं हो गया फिर खुदा नहीं होता। जब मैं का दायरा बन गया ना, मैं हूं यहां, जहां मैं होता हूं वहां खुदा नहीं हुआ करता, याद रखिए। वहां पे हर चीज हो सकती है, अल्लाह की जात कहां होती है? जहां इस मैं को डिल्यूट कर देता है इंसान। कैसे करता है? नमाज में हम सजदा करते हैं, सजदे में क्या करते हैं? अपने सर को, यानी हमारी अकल है ना, दिमाग अकल, इसको जमीन पर रखते हैं अल्लाह के आगे। परवरदिगारा मेरी अकल तेरे आगे, कहीं ऐसी बात है ना, हम अपने दोनों हाथ अल्लाह की दरगाह में जमीन पर रख देते हैं। परवरदिगारा मेरे हाथ, मेरे तमाम चीजें, मेरे एक्शंस तेरे हवाले हैं। घुटने जमीन पर रख देते हैं, परवरदिगारा मेरी इनकसारी हम्बलनेस सिर्फ तेरी खातिर है, मैं किस तेरे हवा किसी और चीज के लिए हम्बल नहीं होगा। जो तेरे आगे हम्बल है मैं उसके आगे हम्बल होगा, जो तेरे आगे हम्बल नहीं मैं उसके आगे घुटने नहीं टेकने लगा। और अपने पांव जमीन पे रखते हैं, यानी परवरदिगारा मेरी मूवमेंट, मेरे एक्शन, मेरी हम्बलनेस, मेरी सोच, मेरी फिक्र, मेरी थॉट्स, मेरी तमाम वजूद तेरे आगे सर्व सुजूद है। जो तेरा एक्शन है, जो तेरा हुक्म है, जो तेरी फरमान, तेरा फरमान है, मैं उसके मुताबिक अमल करूंगा। इसको कहते हैं सजदा करना, इसको कहते हैं अल्लाह के आगे सर्व सजूद होना। ये ईमान का दर्जा है। जब मेरा भी काबा अल्लाह की जात है, आपका भी काबा अल्लाह की जात है, तो हम एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। फिर जब एक डायरेक्शन में खड़े होकर हम अल्लाह अकबर कह के जमात की नमाज पढ़ते हैं, तो फिर मैं ये नहीं सोचता कि किसके कदमों में मेरा सर है, फिर ये नहीं देखता कि उसने मेरे सर के आगे अपने पांव क्यों रखे। मैं एक मोमिन के कदमों में अपने सर को रख के खुदा की तरफ रुख करने को सआदत समझता हूं, अपनी बेइज्जती नहीं समझता। फिर मुझे ये नहीं रहता कि जी इसने पांव रखे हैं, मैं इधर सर रख रहा हूं। उसके कदम होते हैं, मैं कहता हूं हां उसके कदम है, लेकिन जितने उसके कदमों में जगह मिलेगी। एक मोमिन के आगे मैं हम्बल क्यों हूं? क्योंकि वो खुदा के आगे हम्बल है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ों दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस उम्मत को तश्कील देना है, इस उम्मत का को बनाना है, इस कौम को बनाना है, इस मिल्लत को बनाना है। और इस चार दीवारी के अंदर ये जितनी महाफिल होती हैं, विलादतें मनाते हैं, शहादतें मनाते हैं, माह मुबारक रमजान में हम लोग इकट्ठे होते हैं, माह मुबारक मुहर्रम में हम लोग इकट्ठे थे, जितना अजीम और बड़ा प्लेटफॉर्म मकतब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पैरोकारों के पास है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किसी के पास मौजूद नहीं, लेकिन हम देखें कि हम वसीले की तरफ कितने मुतवज्जे हैं और एम एंड ऑब्जेक्टिव की तरफ कितने मुतवज्जे हैं। हमारी इनपुट क्या है और हम आउटपुट क्या हासिल कर रहे हैं, इसके लिए सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं। मैंने कल भी जिक्र किया था ना कि अगर कहूं ना मैं कि यहां पर कमरे में अंधेरा है तो इससे डिसहार्ट नहीं होना। ये डिसहार्ट होने के लिए ये बात नहीं की जाती कि कमरे में अंधेरा है। कमरे में अंधेरा है का मतलब ये है कि रोशनी का बंदोबस्त करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम रोशनी करें। काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ता है। मुझे बड़ी आसानी है, मैं आपको नसीहत कर रहा हूं तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी आप लोगों की तरह का एक इंसान हूं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं खुद पे काम करूं। आपको नसीहत करना बहुत आसान है, मैं आपको कह रहा हूं इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। بات تب ہے جب میں خود کے اوپر بھی کام کروں. میں خود کے اوپر کام کروں, آپ خود پہ کام کریں, آپ خود پہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسرے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا. ایک دوست ہے ہمارے ساتھ, ہم ایک جگہ گئے مجلسوں کے لیے, تو دوستوں نے ہمیں بتایا, کہتے ہیں مولانا صاحب یہ آپ کے ساتھ قریب ہیں لیکن بس اللہ خیر کرے. میں کہا بھائی کیا ہوا ہے, کہتے بس مولانا اللہ خیر کرے, ذرا دیکھنا خیال رکھنا تھوڑا. اچھی بات ہے, کیا بات ہے بھی, کہتے جی بڑے تنگ کرتے ہیں لوگوں, بڑے لوگ ان سے تنگ ہیں. میں کوئی بات نہیں, شیطان کو دیکھیے کہ نیک سے نیک آدمی سے بھی دل برداشتہ نہیں ہوتا. ہم نیکیاں کرتے ہیں نا تو شیطان دل برداشتہ نہیں ہوتا. وہ آئے میں اتھار کو بھی, پیغمبروں کو بھی, حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو بھی راستے سے ہٹانے کی, ڈائیورٹ کرنے کی کوششیں کرتا رہا. کتنی ڈٹرمنیشن ہے شیطان کی, کتنا ڈٹرمنٹ ہے اپنے مقصد میں, ایم اینڈ آبجیکٹو کے حصول میں کتنا ڈٹرمنٹ ہے کہ وہ ڈسہارٹ نہیں ہوتا ہے. کم از کم شیطان سے ہمیں یہ ڈٹرمنیشن سیکھنی چاہیے نیکی کے راستے میں, کہ دوسرے کو نیکی کے راستے میں لانے کے لیے ہم اتنے ہی ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں, اس نے میرے ساتھ زیادتی کی نا, کوئی بات نہیں. حضرت زہرا کا غلام ہے, بی بی کا نام لیتا ہے, حسین کا نام لیتا ہے, اس کی آنکھوں میں اشک جاری ہو جاتی ہے. یہ اشک دلالت ہے اس بات کے کہ اس کے وجود کے اندر خلوص موجود ہے. یہ حسین کا مخلص ہے, یہ حسین کا سپاہی ہے, یہ حسین کے لیے آتا ہے. یہاں پہ جو آتا ہے یہ کسی آتے ہیں, میرے لیے مجھ میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ میرے لیے. آپ مولا حسین کی باتیں, آپ محمد و آل محمد کی تعلیمات کو سننے کے لیے, آپ دین کی باتیں سننے کے لیے, آپ امام زمانہ کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں کہ کون سا ایسا کام کریں کہ امام کو ہم راضی کر سکیں. آپ سب حضرت زہرا کے, مولا حسین کے اور امام زمانہ کے مہمان ہیں. تو جو مہمان اندر آ گیا پھر یہ نہیں دیکھا جاتا مجھے پسند ہے نہیں پسند, یہ جب ان کو پسند ہے تو میری آنکھوں کا نور ہے ان کے قدموں کی خاک, ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا نور ہے. کیوں کہتے ہیں لیلا کی گلی کا کتا بھی عزیز ہوتا ہے, درست ہے, کیونکہ لیلا کے ساتھ ہے نا. ہمارے لیلا کون ہے, ہمارے محمد و آل محمد, ہم ان کے عاشق ہیں, ہم ان کے عشق میں مبتلا ہیں. جب ان کے عشق میں مبتلا ہیں تو بندے کو نہیں دیکھے کہ اس میں کون سا عیب ہے, اس کے ساتھ کیچڑ لگا ہوا ہے, وہ غیبت کرتا ہے, وہ برائی کرتا ہے, وہ بولتا ہے زیادہ, کچھ کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے. بی بی تیرا دل تجھے پسند ہے, تیری درگاہ پہ آیا ہے, کوئی بات نہیں بی بی ٹھیک ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. کبھی اس طرح کر کے دعا دیکھیے, کبھی ایسے مومن کے لیے دعا کیجیے. جب دل کو چوٹ لگے نا کوئی مومن کوئی الٹا کام کر دے, کر دیتے ہیں مومن, مومن کہیں وہ غلطی ہو جاتی ہے, شیطان نے آ کے دھکا دے دیا, کوئی ایسی بات کر کے دل کے آر پار ہو گئی, وہیں بیٹھ جائیں. پروردگارا تجھے پتہ ہے میرے دل میں کتنی چوٹ لگی ہے پروردگارا, لیکن میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. خدایا میرا دل برا ہے, میں دعا کر رہا ہوں, خدایا میں رحمان نہیں رحیم نہیں, تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. خدایا جب میرے دل میں اس کے لیے درد اٹھ رہا ہے, تیرے دل میں بھی اٹھنا چاہیے. خدایا اس کو معاف کر دے اور اس کو وہ درد دے دے جو تو نے میرے دل میں دیا ہے, جو سمجھ بوجھ مجھے عطا کیا خدا ہے اس کو بھی عطا کر دے, یہ بھی دین کے لیے اس طرح تڑپے جس طرح میں تڑپتا ہوں. سلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد, یہ ڈٹرمنیشن جب پیدا ہوگی پھر کیا ہے, وہ تو رحمان و رحیم ہے, وہ پھر کیسے کرے گا, وہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم لوگ بندھے ہوئے ہیں, ہم محمد والے محمد کی ڈوری میں بندھے ہوئے ہیں, گریں گے تو سب گریں گے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم ماؤنٹینئرنگ پہ جاتے ہیں نا لوگ, وہ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں, ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ رہے ہیں, کے ٹو پہ چڑھ رہے ہیں, وہ پانچ سات آدمی کیا کرتے ہیں, ایک رسی سے اپنے آپ کو سب باندھ لیتے ہیں. اگر کسی ایک کے پاؤں سلپ ہو گئے تو باقی کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو روک لیتے ہیں, وہ ایک کو بچا لیتے ہیں, درست ہے نا. لیکن اس کا انتظار نہیں کرنا جن لوگ مجھے بچائیں. پیغمبر اکرم کی ایک روایت ملتی ہے, بڑی سخت روایت ہے, کہتے ہیں روز قیامت میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے, روز قیامت میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کریں گے. بات سمجھ میں, یعنی وہ شر برپا کرتے ہیں اور اس شر کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے, یار اس کو بس اسم بنا کے رکھو یار, یہ بہت شر والا انسان ہے. یہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے. اور اچھے لوگ کون ہوں گے, جو دوسرے کے اگر کسی کا پاؤں پھسل رہا ہے اس کی مدد کر رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں میرے بھائی دیکھیے کیا یار اہل بیت کے ماننے والے ہیں, یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے, ایسی بات نہیں کرنی. لیکن اس وقت نہ بتائیں جب سین پھنسے ہوں, یہاں سین پھنسے ہوتے ہیں ادھر ہی نصیحت شروع کرتے رہے, تو نہیں یہ کہ انہوں نے کہا جاؤ جو کیا ٹھیک کیا, جاؤ اپنا کام کر, تیرا کیا کام ہے. سین پھنسے ہوں اس وقت نصیحت کا کام ٹائم نہیں ہوتا, ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور سو نصیحتیں ایک دفعہ نہ کریں اور ایک نصیحت سو دفعہ بھی نہ کریں. پشتوں کی مثال ہے, کہتے ہیں سو باتیں ایک بار نہ کرو اور ایک بات سو بار نہ کرو. یہ پرانے وقتوں میں لوگوں نے جو بنائی ہے نا, یہ بڑی سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں. आराम से तसल्ली से और अपनी भड़ास निकालने के लिए नसीहत ना करें। अमर बिन मालूम नहीं है तो क्या करें, लेकिन अपनी भड़ास अपना कट्टा सीधा ना करें उसमें। है यार आज मेरे टायर चढ़ा है, आज इसने ये बात कर ली है। तो वो दोस्त की मैं बात कर रहा था, उनको मैंने बताया रास्ते में सफर कर रहे थे जिनकी, तो रास्ते में चलते चलते मैंने कहा यार ये लोग जो ना इस तरह करते हैं, लोग सुनते हैं बात ये इस तरह करते हैं, इस तरह एक मिसाल बना के मैंने पेश कर दी उनके आगे। उन्होंने कहा जनाब मौलाना साहब मैं तो लोगों को समझा समझा के थक गया और ये लोग नहीं समझते हैं, इनको मैं कितनी बार समझाता हूँ इस तरह और इसी बात में टेम्पर लूज करता हूँ। मैंने कहा साहब पहली बात मैं ये बता दूं कि जो इतनी मिसाल बनाई है ये मैंने आपके लिए बताई कि आप खुद को ठीक करें। मौलाना साहब मेरे लिए बनाई है? मैं कहा जी मैं आप यही कर रहे हैं आप दूसरों को करने के। मैं कहा मुझे बताएं कि जो लोग गलत काम करते हैं और आप उनको बचाने की कोशिश करते हैं, अगर आप नहीं बचाएंगे तो क्या हो जाएगा? कहते जी जहन्नम में चले जाएंगे। मैंने कहा आप उनको जहन्नम से बचाना चाहते हैं? मैं कहते जी हम बचाना चाहता हूं। मैं कहा खुलूस है आपके अंदर? बिल्कुल ये खुलूस है। और अगर आप दीन इस्लाम के कवायद को रोंदते हुए उसको बचाने की कोशिश करेंगे, अगर आप इस्लाम के कानून तोड़ेंगे तो आप किधर जाएंगे? कहते जी जहन्नम में। मैंने कहा आपकी मिसाल मुझे ऐसे नजर आती है कि जहन्नम के दरवाजे में दो आदमी खड़े हैं, आप कहते हैं मैंने जहन्नम में जाना है और वो कहते हैं मैं जहन्नम में जाना चाहता हूं। आप उसको पीछे दिखा रहे हो, हटो पीछे, मैं जहन्नम में जाना चाहता हूं। मेरे भाई खुद को जहन्नम से बचाओ, आपके लिए खुद को बचाना पहले वाजिब है। जहाज में ट्रेवल करते हैं ना वो ऑक्सीजन का कहते हैं ना, वो आके बताते हैं कि वो जो ऑक्सीजन गिर पड़ेगी पहले अपने मुंह पर लगाओ फिर बच्चे के मुंह पर दूसरे के मुंह पर लगाओ, ये कहते हैं ना। तो पहले खुद को जहन्नम से बचाएं। मैंने कहा भाई मेरे आज से, मैंने कहा मैं अपनी जिम्मेदारी पे आपको एक बात कर रहा हूं क्योंकि काफी लोग उनके इस अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से परेशान थे। मैंने कहा भाई आज आपको एक नसीहत कर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी आप पर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर साकेत है, आप नहीं करें। कहते हैं मौलाना वाकई? मैंने कहा नहीं करें। मैंने कहा अब अगर आप करेंगे तो आप खुदा की खातिर नहीं कर रहे, अपनी जात की खातिर कर रहे हैं। कहते हैं मैंने कहा आपको यह अंदाजा तो ना, मैं अगर कर रहा हूं खुदा की खातिर, अल्लाह की खातिर अगर कोई काम कर रहा हूं तो उस काम के करने में या ना करने में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर मैं कर रहा हूं फिर भी खुश हूं, नहीं कर रहा हूं फिर भी खुश हूं। नमाज में अल्लाह की खातिर पढ़ रहा हूं, अगर इमाम आके कह दे मौला कहे नमाज नहीं पढ़ो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अगर फिर मैं क्यों नहीं, मैंने पढ़नी ही पढ़नी है, इसका मतलब है मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूं, खुदा के लिए नहीं पढ़ रहा। तो मैंने कहा अब अगर अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? खुदा की खातिर नहीं कर रहे, फिर आप अपनी खातिर कर रहे हैं। तो कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा मतलब यह हुआ सादा जुबानों में बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में कि आपकी जुबान पर ताला लग चुका है। ये ताला देखते हैं कितने दिन कायम रहता है। अब दूसरे दिन जनाब कहीं हमें छोड़ने के लिए गए और छोड़ने के लिए जब गए सेंटर में तो एक और साहब मिल गए उनको, तो उनको कहते हैं कोई बात उन्होंने की तो ये फौरन कहते हैं, कहते हैं यार मैं क्या करूं मेरा ताला लगा हुआ है वरना मैं तुझे अभी जवाब देता। अब वो लतीफा क्या हुआ? लतीफा यह हुआ कि दूसरा आगे से कहता है, कहते हैं यार ताला तो मुझे भी लगा हुआ है। कहते हैं तुझे भी ताला लगा हुआ है? मेरे पास फौरन दोनों पलटे, कहते हैं सर तीसरा कौन है? तो जब तीसरा ढूंढा कहते मौलाना साहब आपने काम कर दिया। यही तीन थे क्या? काम अच्छा करना चाहते हैं, नेकी करना चाहते हैं, लेकिन नेकी में एम एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर निगाह नहीं है, आउटपुट पे निगाह नहीं है, आउटपुट ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे। नतीजा क्या हो रहा है कि उस अच्छे काम का बुरा नतीजा निकलता जा रहा है। लोग परेशान हैं, लोग आपस में मैंने वो ये कर रहे हैं कि अब बात कर रहे हैं, ये क्या कैसा मोमिन है जो इधर आए और दूसरे के चेहरे पर रौनक ना आ जाए। मौला फरमाते हैं लोगों के दरमियान जिंदगी गुजारो तो इस तरह कि जब उनके दरमियान में रहो तुमसे रहने के मुश्ताक हो और अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो तुम्हारे पीछे रोए तुम्हारे फराक में। इस लेवल पे कैसे आ सकते हैं, उम्मत कैसे बन सकते हैं, तमाम मसाइल का हल इन बातों में है। लेकिन याद रखिए रेवोल्यूशन स्टार्ट्स विद अ वर्ड आई, इनकलाब तब्दीली चेंज अपने वजूद से आगाज करना होगा। मैं इस दो हाथों का, दो टांगों का, इस जिस्म का, मैं इसका जिम्मेदार हूं, मुझे इसका सवाल है, मुझे आपका सवाल नहीं होगा। मैं आपके सवाल में जितना इंटरेस्ट लेता हूं ना आपके जवाब में, वो अपने जवाब में मुझे लेना चाहिए। अब अगर मैं दूसरे के काम में मुदाखलत के लिए कर रहा हूं तो फिर मैं खुदा की खातिर नहीं कर रहा, मेरा नफ्स मेरा शैतान मुझ पर गालिब होके इस्लाम के जरिए इस्लाम का बेड़ा गर्क करा रहा है, दीन के कवानीन के जरिए दीन का, इसके ऊपर मुतवज्जो होना चाहिए। लेकिन इसके ठीक करने के लिए हल क्या हुआ? सेल्फ कंट्रोल, अपने वजूद पर कंट्रोल हासिल होना चाहिए। मेरा दिल चाह रहा है ये खाऊं, थोड़ी देर अपने आप को रोक के देखें क्या मैं रोक सकता हूं अपने आप को। मेरा दिल चाह रहा है कि उससे बात की मैं रिएक्ट करूं, क्या मैं दो दिन अपने आप को रोक सकता हूं? अभी दूसरे ने बात की मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या मैं अपने आप को वो कर सकता हूं? ये सेल्फ कंट्रोल पहली सीढ़ी है, पहली सबमिशन अल्लाह के आगे, जो गुज़िश्ता साल भी गुज़िश्ता मुहर्रम में भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था। दूसरी चीज क्या है? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल होगा तो इंसान तक्वा की सीढ़ी पर कदम रख सकेगा। और हम तमाम दीन इस्लाम में, तमाम मामलात में जब देखते हैं, एक तरफ हमें वो नजर आते हैं जिनको सेल्फ कंट्रोल होता है, जिनका तक्वा होता है, जिनकी सबमिशन अल्लाह के आगे है। सबमिट भी उन्होंने अल्लाह के आगे किया है, सेल्फ कंट्रोल भी है, तक्वा और परहेजगारी भी है, दीन की खिदमत का जज्बा भी है। और दूसरी तरफ हमें वो नजर आते हैं जिनका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो मादियात में, चाहे वो काबिल हो, चाहे वो फिरौन हो, चाहे वो नमरूद हो, चाहे वो शद्दाद हो, चाहे वो अबू जहल हो, अबू लहब हो, यजीद हो। जब फरिश्तों से कहा गया ना परवरदिगार आलम ने, इन्नी जाअलुन फिल अर्ज खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा मुकर्रर करने वाला हूं, तो उन्होंने कहा परवरदिगार तो उसको मुकर्रर करेगा जो जमीन पर फसाद और खूनरेजी करेगा, उसकी नजर में शायद काबिल था। फिरौन, नमरूद, शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब और यजीद ऐसे लोग थे। और अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं वो तू नहीं जानता। उस वक्त शायद खुदा कहना चाहता था कि अगर काबिल है तो उसके मुकाबले में हाबील भी है, अगर फिरौन है तो उसके मुकाबले में मूसा भी है, अगर नमरूद है तो उसके मुकाबले में इब्राहिम भी है, अगर अबू जहल और अबू लहब है तो मुकाबले में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और अगर यजीद है तो उसके मुकाबले में हुसैन भी है। हमारी जिम्मेदारियां इन तमाम बातों का निचोड़, इंशाल्लाह कल हम आप लोगों से पूछेंगे, इसका ये मतलब नहीं गायब हो जाए। आजकल सर्दी काफी है, शिंकरें फैलना कोई मसला नहीं, हमारे लिए दो आदमी काफी फायद करें माशाल्लाह, जो काफी मजमा है, लेकिन अगर कम भी हो कोई मसला नहीं। इस्लाम क्वालिटी मांगता है, क्वांटिटी नहीं मांगता है, क्वालिटी। अगर क्वांटिटी की जरूरत होती तो इमाम हुसैन के नहीं जानते थे कि किस तरह क्वांटिटी को इकट्ठा करना है, लेकिन उन्होंने क्वालिटी इकट्ठी की, क्वालिटी इकट्ठी की। करबला उन लोगों का इकट्ठ है जिनको सेल्फ कंट्रोल हासिल था, करबला वो लोग हैं जिनको एक उम्मत की क्वालिटीज जिनके अंदर मौजूद थी, एक उम्मत की तरह लड़े वो लोग 72, वो 72 एक उम्मत की तरह लड़े हैं, वो इंडिविजुअल नहीं लड़े हैं। पूरे करबला की जंग में एक खातून ऐसी नजर नहीं आती जिसने कहा मौला मेरा बच्चा प्यासा मर रहा है मैं जा रही हूं पानी लेने, मर्दों की जंग है, औरतों की जंग तो नहीं है ना, मैं जा नहीं। इमाम ने कह दिया रुक जाओ तो रुक गए, इमाम ने कहा चल पड़ो तो चल पड़े। एक बच्चा करबला में नजर नहीं आता जो इमाम की इजाजत के बगैर खुराक की तरफ के सामने पानी है, प्यास से बिलक रहे हैं 3 दिन तक, और एक बच्चा मैदान की तरफ नहीं जाता। क्या चीज है? सेल्फ कंट्रोल है। और सबमिशन किसके आगे? खुदा के आगे, और खुदा की वजह से रसूल के आगे, रसूल की वजह से इमाम के आगे, और इमाम जब मौजूद है उनकी इजाजत के बगैर कोई नहीं जानता है। यह क्या है? सेल्फ कंट्रोल है। हमें बड़े शहादा, हर शहीद, मैं कहता हूं कि इमाम हुसैन का इस्माइल है, दोस्त अजीज अकारिब रिश्तेदार, यानी जो इंसान अपने गयूर इमाम हो उसको अपने दोस्तों अजीजों और साथियों को कुर्बान करना बड़ा सख्त मरहला है। बड़े बड़े शहादा का जिक्र हम सुनते हैं, एक उन्हीं शहादा में से वाह बिन अब्दुल्लाह कलमी, वालिदैन की बड़ी एहतराम करती थी अहले बैत का, अहले बैत की बहुत मानने वाली, जिनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत थी, ऐसी खातून थी। काफिले के साथ इनका काफिला आ गया, कहा बड़ा नूरानी काफिला है, मालूम करो कौन है? मालूम हुआ कि हुसैन इब्ने अली, नूर का मुंबा, पंचतन पाक की आखिरी हस्ती, वो नूर किसी नबी का वाहिद नवासा जो इस दुनिया में मौजूद था, जो पैगंबर अकरम की गोद में पला है, वो जा रहे हैं, उनका कारवान और करबला का रुख है। हालात का अंदाजा हो गया, मां ने कहा दूध नहीं बख्शूंगी अगर अपने कारवान को इनके साथ न मिला दिया। इस शख्स की अभी नई नई शादी हुई थी चंद दिनों पहले, बीवी आड़े आ गई कि हमारा अपना सफर है हम उधर चाहते हैं, लेकिन मां की बात मान ली गई। रोजे आशूर, मां बेटे के सामने, बेटा सारी जिंदगी तेरी खिदमत की है, उसके बदले में सिर्फ एक चीज मांगती हूं, आज हुसैन के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दे, अगर आज तू कुर्बान नहीं कर सका तो मैं दूध तुझे बख्शूंगी नहीं। बीवी परेशान थी, अभी शादी हुई है, शादी जब होती ना खातून की तो अपना सब कुछ बांध देती है अपने शौहर के साथ, उसकी जिंदगी, उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका फिरना, फिर वो तेरा मेरा नहीं होता, वो फिर हमारा होता है। ऐसी खातून थी वो। उसने फौरन कहा कि अभी मेरी शादी हुई है, अभी ये शहीद हो जाए और अभी ये जंग में चले जाए, मेरा क्या बनेगा। आखिर में जब बहुत समझाया बुझाया, कुछ शरायत के साथ राजी हो गई। कहती है कि शर्तें क्या हैं? कहा पहली शर्त मेरी यह कि मौला हुसैन के सामने मेरे साथ अहद करो, मुझे वादा दो कि शहीद को क्यामत के दिन दूसरों की शफात का हक हासिल है, शहीद को हक हासिल है कि दूसरों की शफात कर सके। कहा रोजे क्यामत तो मुझे भूल नहीं जाएगा, जब क्यामत का दिन आएगा तो मुझे भूल नहीं जाएगा, तू मुझे याद रखेगा, ये मौला हुसैन के सामने वादा करना है तुमने। एक और दूसरा क्या था साधारो? दूसरा कहा कि दूसरा यह है कि जब ऐसी जंग होती है और लोग शहीद हो जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, जो लोग बच जाते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस बनती है वो बात। तो कहते हैं कि मौला हुसैन से ये वादा लेंगे कि शहादत के बाद मुझे बीबियां अपने साथ रखेंगी ताकि मैं महफूज रहूं। किस लिए? यजीद की फौज से महफूज रखने के लिए। कहा मैं बीबियों के साथ रहूंगी, सानिया जहरा के साथ रहूंगी, ज़ैनब कुलसूम के साथ रहूंगी, ये मुझे अपने साथ रखेंगी ताकि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। देखिए उसकी क्या नजर थी, दुश्मन को वो किस एंगल से देख रही थी कि दुश्मन जितना भी बेदीन हो गया, नाम इस्लाम का पड़ा है, इतना तजावुज नहीं करेगा। वाह बिन अब्दुल्लाह कल भी पड़े मैदान की तरफ, जंग होती है मुकाबिल में जनाब पहलवान आ रहे हैं, उस जमाने में वन टू वन पहले जंग होती थी, बाद में बदवा होता था। कहते एक आया दूसरा आया, आखिर में जब एक हमला हुआ, एक शख्स ने आके जर्ब लगाई और वाह बिन अब्दुल्लाह कल भी गिर पड़े। बीवी देख रही थी खेमे से, अब सब्र नहीं हुआ। कहते हैं खेमे की जो जो पोल होता है ना, खेमे का, वो निकाला, मैदान की तरफ बढ़ गई और जाकर उस शख्स के सर पे ऐसी मारी कि वासिले जहन्नम हो गया। जब देखा गया कि ये सूरत हाल है, उधर से हुक्म हुआ, हमारे साथ ने हुक्म दिया कि जाओ उसके ऊपर हमला करो। हमला हुआ और ये वाहिद खातून है जो करबला में शहीद हुई। मैं कहूंगा कि हुसैन तेरे वादे कैसे हैं? तेरे पास इसलिए आई थी कि उसका शौहर उसकी शफात करे, मौला तूने उसको उस दर्जे पे पहुंचा दिया कि वो खुद दूसरों की शिफात करे, ऐसा है करबला। लेकिन मौला किस अंदाज से, ये तो वक्त गुजर गया, वो कहती रह गई होगी, सोचती रह गई होगी कि शायद करबला का जब वाकया हो गया ना, करबला के वाकये के बाद उम्मे कुलसूम और ज़ैनब कितनी महफूज रहेगी, लेकिन शायद काश वो देख सके कि करबला की जंग खत्म होनी थी, हुसैन का सर दर्द से जुदा होना था, तो आग चारों तरफ से चल पड़ी। बाज रिवायत कहती है कि एक एक खेमे को जलाया गया, लेकिन बाज रिवायत कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, चारों तरफ से लोग आग लेकर आए और उन खयाम को जहां औलाद रसूल कयाम पजीर थी, चारों तरफ से आग लगा दी गई। अला लानतुल्लाह अला अल-क़ौमिल ज़ालिमीन इलाही बिहक़ मुहम्मद व अली व फातिमा व हसन हुसैन। खुदाया तुझे शहादाए करबला का वास्ता, हमें करबला के पैगाम को समझने, अपने जिस्म पर, अपनी रूह में, अपने आमाल में उसको इम्प्लीमेंट करने की हमें तौफीक इनायत फरमा, इस्लाम के उसूल व कवायद और ज़वाबित पर अमल करने की हमें तौफीक इनायत फरमा, इस्लाम के उसूलों को अपने वजूद पर, अपने घरों में और अपने माशरे में इम्प्लीमेंट करने की हमें तौफीक इनायत फरमा। हकीकी मानों में करबला का और हुसैन का और ज़ैनब सज्जाद का सफीर बनने के हमें तौफीक इनायत फरमा। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिह अतहार। फातिमा हुसैन, या 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 हुसैन,
अभी आती है सकीना की सदाएं लोगों, आए जिंदानों से अभी आती है सकीना की सदाएं, जिंदानों से अभी आती है। ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندانوں سے میرے بابا کو ملا دو میں دعائیں دوں گی سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا بے وطن تجھ کو لیے پھرتا ہوں بازاروں میں اور لہو آج بھی جاری ہے تیرے کانوں سے ابھی آتی سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے بول سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا بول سجاد یہ مقدر تیرا بے وطن تجھ کو لیے پھرتا ہوں بازاروں میں اور لہو آج بھی جاری ہے تیرے کانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں جا کے مقتل میں پکاری اے سکینہ رو کر جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کر بھیا قاسم میرے اکبر تم کہاں ہو سارے میرے بابا کو بچا لو آ کے شیطانوں سے ابھی آتی کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے آٹھ آزان بیکوا فضا میں گونجی آٹھ آزان بیکوا فضا میں گونجی ثانی زہرا کے خطبوں دربار میں آزانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے آٹھ آزان بیکوا فضا میں گونجی آٹھ آزان بیکوا فضا میں گونجی ثانی زہرا کے خطبوں کو دبانے کے لیے شور برپا کیا دربار میں آزانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدا کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا لب دریا سے علمدہ دیکھی آئی یہ صدا ہے سکینہ تجھ سے شرمندہ ہے چاچا تیرا پانی پہنچا نہ سکا کٹے شانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں
Jao Sing, Jao Sing, Jao Sing, Jao Sing, Jao Sing.